समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के एक और संस्करण के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में और इन अंक में और आज के रविवासरीय अंक में तमाम खबरों के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ और ये बताने के लिए कि आज का दिन क्यों है खास। कौन है जानते हैं आप? शगुन। नमस्कार शगुन।
नमस्कार नवीन। वेल गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल हियर वी आर, मी एंड नवीन, शगुन चोपड़ा एंड नवीन, एंड फॉर यू लिसनर्स दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे ऑन द संडे मॉर्निंग।
संडे मॉर्निंग। और शगुन कहते हैं ना कि अगर शायराना अंदाज में बात करें तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब मिल बैठेंगे दो यार तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। अब हम दोनों की बातें कितनी दूर तलक जाती हैं और शाम तक आप किन किन लोगों तक हमारी बात पहुंचाते हैं ये आप ही जाने। हमारा काम है आपको आज रविवार के लिए तैयार कर देना, ये तैयार कर देना कि आज किन खूबसूरत गीतों के साथ आज अपना अपना दिन गुजारेंगे, किन खूबसूरत बातों के साथ आप अपने दोस्तों के साथ चुहलबाजी करेंगे और किन लोगों को आज आप याद करेंगे।
वेरी वेल सेड नवीन, आई मस्ट से दैट। वेल यस लिसनर्स, बी विद अस, दिस इज इन अ वे वी आर टेलिंग यू टू बी विद अस फॉर रफली द नेक्स्ट हाफ एन आवर, बिकॉज एज नवीन सेड देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। We'll give you the national and international news, the latest one. Also, we'll be providing you Metro City updates. And today, it's 13th of July. So there is a lot of historical information that we're going to explore.
ये भी बताएंगे कि अगर आपने कल मैच नहीं देखा है तो विंबलडन में क्या हुआ और क्रिकेट में क्या हुआ। तो शुरू करें शगुन।
श्योरली।
तो चलिए बिहार चलते हैं। बिहार में अब तक 80% से अधिक मतदाता अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का काम 25 जुलाई की निर्धारित समय सीमा से पहले ही पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली अस्थायी सूची में नाम शामिल कराने के लिए मतदाताओं को वांछित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा। जरूरी होने पर मतदाता का दस्तावेज जमा कराने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया जा सकता है। कल शाम 6 बजे तक 4,66,00,000 फॉर्म आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET पर अपलोड किए जा चुके हैं।
Well, the second headline that we have, the World Health Organization, WHO, has recognized India's pioneering efforts in integrating artificial intelligence, AI, a name which is well being repeated everywhere in all the fields, with traditional medicine, particularly Ayush systems, in its first ever technical brief titled Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine. WHO document highlights India's advancements in applying AI to Ayurveda, Siddha, Yunani, Sowa Rigpa, and homeopathy. Listen in to this report, listeners.
AI-driven diagnostic systems combining traditional methods like pulse reading and Prakriti assessment with machine learning and deep neural networks are improving accuracy and enabling personalized preventive care. The Ayurgenomics Initiative, a fusion of Ayurvedic principles and genomics, uses AI to identify disease markers and tailor health recommendations. Additionally, AI is aiding in decoding the genomic and molecular basis of herbal formulations, bridging traditional wisdom with modern science. India's Traditional Knowledge Digital Library, TKDL, was praised as a global model for preserving indigenous medical heritage. AI-powered tools are facilitating the cataloging and semantic analysis of ancient texts, making therapeutic knowledge more accessible. The WHO brief also recognizes India's use of AI in drug action pathway identification, comparative studies across traditional systems, and the development of artificial chemical sensors to evaluate traditional parameters like rasa, guna, and virya, modernizing traditional formulations. The WHO commended India's broader efforts, including digital platforms for online consultations, promoting digital literacy among Ayush practitioners, and creating interoperable systems to integrate traditional medicine with mainstream healthcare. The brief also noted the Ayush sector's contribution to India's economy, with a market size of $43.4 billion, underscoring its role in driving economic growth. Prime Minister Narendra Modi's vision to leverage AI for social development and inclusive growth has driven India's advancements in this field. Amrit Bhushan, Akashvani News, Delhi.
Union Minister of State for Ayush, Pratap Rao Jadhav, hailed the WHO recognition as a testament to India's dedication to advancing traditional medicine through technology. He said, through platforms like the Sahi Portal, Namaste Portal and Ayush Research Portal, India is preserving its ancient medical wisdom while shaping a future of personalized, evidence-based healthcare.
और शगुन आयुर्वेद ना सिर्फ दवाएं नहीं है, सिर्फ पारंपरिक दवाएं नहीं है, ये एक जीने की कला है जो आपको ये बताती है कि सुबह से लेकर रात तक सोने तक आप किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं. और जब इसके साथ एआई जुड़ गया है ना, और जो जुड़ने की तैयारी में है, तो फिर उसके बाद देखिएगा जिंदगी और जीवन कितना आसान हो जाता है ना. आपको पल पल की जानकारी भी मिलती रहेगी और आपके शरीर में क्या व्याधियां हैं ये भी आपको समझ में आने लगेगा. पारंपरिक दवाओं के साथ एक नई तकनीक भी जुड़ रही है आयुर्वेद में. इसी के चलते अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है. यह आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है. आज इस सम्मेलन के पहले दिन 10 एंडोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा. परंपरा और तकनीक के समागम वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के 500 से अधिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों के शामिल होने की संभावना है.
Union Ministry of Youth Affairs and Sports has announced the opening of nominations for the prestigious Tenzing Norgay National Adventure Award 2024. This award recognizes outstanding achievements in adventure, aiming to foster endurance, risk-taking ability, cooperative teamwork, and quick reflexes among youth in challenging situations. This is presented annually alongside the Arjuna Awards. The Tenzing Norgay National Adventure Award honors excellence in 4 categories. These are land adventure, water adventure, air adventure, and lifetime achievement for adventure activities. Across these domains that I just mentioned, also nominations for the 2024 awards, they are being accepted online through this portal, awards.gov.in. And the dates are from June 1 to July 15. So this ends on July 15.
अगली खबर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सिंगापुर यात्रा से और चीन की यात्रा से है. ये 3 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर सिंगापुर में वहां के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे. डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री चीन के तियानचिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में भी भाग लेंगे. चीन यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. और आइए अब श्रीलंका चलते हैं.
Yes. So this update, let me expand on that. Sri Lankan Prime Minister Dr. Harini Amarasurya and Indian High Commissioner Santosh Jha have jointly inaugurated 90 newly built houses in Anuradhapura. The houses were built under the India-assisted Sri Shobhita Nahimigama project. At the event, the Indian High Commissioner spoke about the shared vision of India and Sri Lanka for inclusive development. He also mentioned other Indian-supported projects in the region, such as railway upgrades and sacred city complex. Prime Minister Amarasurya paid tribute to the legacy of Ven Madula Wale Shobhita Thero. She expressed gratitude for India's support to uplift disadvantaged communities. The project is seen as a significant step towards strengthening development cooperation between the two countries.
अब आपको खेलों की दुनिया में लिए चलते हैं. कल का दिन खेलों की दुनिया में खास रहा. बहुत से स्पोर्ट्स हुए, लेकिन 2 स्पोर्ट्स चुन के हम लेकर आए हैं. एक क्रिकेट, जिसमें पूरे भारत का इंटरेस्ट रहता है, और दूसरा विंबलडन, जिसमें कुछ खास लोगों का इंटरेस्ट रहता है. और कल विंबलडन का फाइनल था, महिला सिंगल्स का फाइनल था. और उस महिला सिंगल्स के फाइनल के अंदर हम उम्मीद कर रहे थे कि मैच बराबरी का होगा शगुन, लेकिन मैच एकदम बराबरी का नहीं था. 6-0 से मैच खत्म हो गया. और जो स्वेतेक थी, ईगा स्वेतेक, उन्होंने पहली बार विंबलडन का सिंगल्स का खिताब जीत लिया. एक तरफा मुकाबला था और उन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को बहुत आसानी से हरा दिया. और जब मैं मैच देख रहा था, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तो कोई संघर्ष होगा, लेकिन देखिए ना, संघर्ष बिल्कुल भी नहीं हुआ और स्वेतेक का ये छठा ग्रैंड स्लैम खिताब था.
ईगा कॉन्क्वर्स द ग्रास एंड बिकम्स अ विंबलडन The ladies' singles champion for 2025 from Poland, Iga Świątek.
Thank you to everyone who's supported me since my first round match here. It's been such an incredible atmosphere, and you guys have carried me through this entire championship.
और अगर टेनिस में इंटरेस्ट है ना, तो शगुन आज का मैच जरूर देखना, क्योंकि आज है विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्काराज से, और उम्मीद है कि आज एक लंबा, अच्छा और एक शानदार मैच देखने को मिलेगा. चलिए क्रिकेट में क्या है.
Yes, talking about cricket now, hosts England will resume their second innings play against India on day 4 of the third test of the Anderson Tendulkar Trophy at Lord's today. The match, it will start at 3:30 p.m. Indian Standard Time. England were 2 for no loss at stumps on day 3 yesterday. They now hold a 2-run lead. Earlier, India were bundled out for 387 in their first innings, equaling England's first innings total of 387. For visitors, KL Rahul, he scored 100, while Rishabh Pant and Ravindra Jadeja contributed 74 and 72 runs respectively, Rishabh Pant making 74 and Ravindra Jadeja 72.
Yani ab 2 din bache hain aur ye 2 din Indian team ke liye khaas hai, hai na?
Bilkul. Also for England,
England
talk about
also,
those innings
as well. Hum to Bharat ki jeet ki baat karenge na.
No, I was talking about the innings. Let me focus on that. About these two players specifically, I'm talking about Chris Wokes. He scalped 3 wickets for 84 runs, while Jofra Archer and Ben Stokes also, they got 2 wickets apiece. India also set a new world record for the most sixes in an away test series, which is internationally played, hitting 36. So far surpassing the previous record of 32 set by the West Indies against India in 1974-75. So a record has been set.
Record has been set. और ये 36 छक्कों का रिकॉर्ड जो है ना, सिक्सर का रिकॉर्ड है, ये भी हमारी झोली में आ गया है. और आज के दिन देखिएगा, जब टीवी ऑन करके बैठ जाइएगा, क्योंकि 10 के 10 विकेट हम ले लेंगे और कल देखिए हम जीत की ओर बढ़ जाएंगे.
जी, एंड ऑल्सो देर इज दिस इम्पोर्टेंट माइल स्टोन. दिस कम्स जस्ट 3 मैचेस इन टू द 5 टेस्ट सीरीज. जस्ट 3 मैचेस. द 5 मैच टेस्ट सीरीज इज करंटली इट इज लेवल्ड एट 1-1 each.
और अगर खेलों की दुनिया की बात करें और खेलों की खबरों की बात करें, तो आज है सुपर संडे. क्रिकेट भी है आपके पास और विंबलडन भी आप ही के पास है. आइए अब आपको आपके शहर लिए चलते हैं, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के लिए. शगुन, क्या कुछ है आपके पास?
यस नवीन, एंड आई एम गोइंग टू बिगिन इन दैट ऑर्डर ओनली. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट चेन्नई. The National Bank for Agriculture and Rural Development marked its 44th Foundation Day with a commemorative event in Chennai, celebrating its journey as a pivotal institution in India's rural development. A thought-provoking panel discussion on fostering rural enterprises for inclusive growth. It set the tone for the evening, highlighting how rural entrepreneurship can serve as a key driver of job creation, of innovation and equitable development. An exhibition showcasing traditional crafts, agro-products and rural innovations, they reflect the dynamic enterprise of India's villages. The chairman of NABARD, Shaji KV, he said that the 44-year journey is a testament to the unwavering commitment to rural transformation. So this was the event at Chennai. Now, I will focus on Bengaluru. Representatives of various farmer organizations from Chanarayapatna, Hubli, in Devanahalli Taluk, consented to give 449 acres of land for the construction of a high defense and aerospace park in this area, Chanarayapatna, near Bengaluru. 1,282 acres of land in 10 villages is required for the construction of a high-tech defense and aerospace park, and the farmers were resistant to give the land. The representatives who met the chief minister in Bengaluru yesterday submitted a request to fix a fair and appropriate price for the land to be acquired. Now we are moving on. We are heading to Hyderabad. This is a good news for the street vendors. Street vendors in Telangana will soon be organized into common interest groups, similar to women's self-help groups under the National Urban Employment Scheme. The initiative, it aims to promote saving habits and facilitate access to bank loans. According to Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas officials, each CIG, which is the common interest group, will consist of 10 to 12 members. Bank accounts will be opened in the names of group members to encourage regular savings. After monitoring their financial transaction for 6 months, banks will extend linkage loans. Also, a survey conducted by the Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas, it identified street vendors engaged in various businesses like pani puri on carts, running tea stalls or fruit shops, and many vendors, they rely on daily finances who charge high interest rates on hand loans. So this is good news for them.
Shagun, ye bahut achhi khabar hai. Jab common interest ke group jo hote hain na, jo log hote hain apna ek chota sa group bana rahe hain, aur khaskar agar vendors ki baat kare, choti choti savings jo hain inke liye bahut mayne rakhti hai. Agar aap ikhatte ho jate hain, ikhatte ek jaise common interest hota hai, ikhatte ek jaise baat kar sakte hain, to aap saath jaake bhi ek dusre ki samasyaon ko suljha sakte hain. Aur sabse badi samasya aati hai agar aap bank loan ke liye jaate hain ya kisi aur tarah ki suvidha ke liye jaate hain.
And this is expected to reduce the vendors' dependence on private money lenders and help them expand their business.
ये बहुत बड़ी बात है। और अब दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल प्रगति मैदान में इंडियन हाउसवेयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी भारतीय उद्योग की क्षमता, कौशल और आत्मबल की प्रेरणादायक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में स्टील उद्योग एक सशक्त कड़ी बनकर उभरा है।
प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं सोचती थी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज ऐसी है। इस एग्जीबिशन के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरी विधानसभा के लोग स्टील इंडस्ट्रीज में कितना आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। और निश्चित मानिए, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के इस प्रोडक्ट के लिए भी काम करूंगी, दिल्ली शहर के लिए भी काम करूंगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओवरहेड बिजली की तारों को जमीन के अंदर बिछाने से जुड़े एक पायलट प्रोजेक्ट का कल शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के शालीमार बाग विधानसभा के ईस्ट ब्लॉक में ओवरहेड बिजली की तारों को जमीन के अंदर बिछाया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली वासियों को नई सुविधा मिलने जा रही है।
ओवरहेड वायर फ्री दिल्ली हो ताकि सुरक्षित और निर्बाध बिजली क्षेत्र को मिले, और जो बुरी हालत ओवरहेड वायरिंग के कारण से शहर की दिखाई देती है उस सबको खत्म किया जाए। मुझे खुशी है जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिल्ली की जनता को एक नई सुविधा, एक नया विजन और एक नया आकाश देने का काम सरकार कर रही है।
और अब रुख मुंबई का। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को मराठा सैन्य क्षेत्र के हिस्से के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किए जाने का जश्न मनाने के लिए मुंबई भाजपा आज मुंबई के 106 स्थानों पर आरती और शिव जलोष का आयोजन करेगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिडको और अडानी समूह को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कल रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका में स्थित हवाई अड्डा परियोजना स्थल का निरीक्षण भी किया। और अब कोलकाता चलते हैं। कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान जोका में हुए दुष्कर्म मामले में कल अदालत ने आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया था। और अब शहरों का मौसम। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तापमान 26 डिग्री और 36 डिग्री के बीच बना हुआ है। मौसम बहुत सुहाना है, कभी कभी थोड़ी उमस हो जाती है, दिल्ली वालों को इसकी आदत है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, 26 डिग्री और 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और कोलकाता में भी लगभग यही हाल है, तापमान 25 और 33 डिग्री के बीच वैरी करेगा। देश के बाकी हिस्सों का हाल।
Yes, first beginning with Chennai, it is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. It's much the same in Bengaluru. It is also expected to have a cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Talking about Hyderabad now, it is expected to have cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between minimum of 25 degrees and maximum of 34 degrees Celsius, Naveen.
और अब बातें इतिहास की। शगुन, चट्टाने जो होती हैं ना, जो जिसे हम रॉक्स कहते हैं, ये केवल पहाड़ों और धरती की सुंदरता का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का भी एक अहम आधार है। और सुबह सुबह चट्टाने और पत्थरों की बात इसलिए क्योंकि आज है इंटरनेशनल रॉक डे। हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है।
Also, we have even named a music genre after them because, well, rocks, they rock.
Rocks.
Also, how can we celebrate that? Let me tell our listeners about that also. There are a number of different ways that you can celebrate this day, International Rock Day. One of the options is to do a bit of research on the different types of rocks that are available across the globe, as well as different uses for these rocks. You can share this knowledge with your friends and also family. Why not go on a rock hunt together?
चलिए और अब इतिहास की कुछ और घटनाएं। आज ही के दिन 1837 में महारानी विक्टोरिया बंकिंघम पैलेस में स्थानांतरित हुई थी। तब से ये इंग्लैंड के राजा रानी का एक आधिकारिक निवास बन गया था।
In 1905, Gandhi ji opposed Bengal partition, supported boycott of British goods.
1905 में वो आज ही का दिन था जब कोलकाता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव दिया था।
And you know what, listeners, in the year 1974, India's first one-day international, it was played versus England at Headingley.
चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 1908 महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और 1929 आज ही का दिन था जब क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से। और आइए अब याद करते हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने हमारे जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है और आज ही के दिन किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। आज है बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका आशा पूर्णा देवी की पुण्यतिथि, जिन्होंने विशेषकर महिला समाज की स्थिति पर अपनी कलम चलाई थी। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी को और आशा पूर्णा देवी ने प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता जैसी चर्चित कृतियां लिखी जिनमें स्त्री स्वतंत्रता और समाज में महिलाओं के अधिकारों का एक मुखर चित्रण मिलता है।
Today, listeners, we are also remembering James Bradley, the astronomer most famous for his discovery of the aberration of starlight. Well, Bradley continued to study the stars and he composed extremely accurate star charts, and they were the bulk of his observations. They were published posthumously. This finding, the aberration of starlight, the finding was an important piece of evidence supporting Copernicus's theory that the Earth moved around the Sun, and also provided an alternative way to estimate the velocity of light.
और अब बात उन व्यक्तियों की जिनकी आज जन्म जयंती है या जन्मदिन है। तो सबसे पहले बात आती है हिंदी सिनेमा की उस प्रसिद्ध अभिनेत्री की जिसकी तुलना मधुबाला से होती थी। बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री थी। 1950 और 60 के दशक में अपने दमदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल तो था वो जीत लिया। 13 जुलाई 1931 में उनका आज के दिन जन्म हुआ था। नाम बीना राय। काली घटा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ताजमहल और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से उनको याद किया जाता है। बीना राय के दो खूबसूरत गीत हम चुनकर लाए हैं जो उन पर पिक्चराइज हुए हैं। आइए सुनते हैं उनको और याद करते हैं उन्हें।
Well, Beena Rai's work is special. a mix of style, grace and real talent. And when Naveen, I was looking her up on the internet, well, I was searching about her, she wasn't just beautiful, well, her on-screen presence was both grand and easy to connect with, right?
लेकिन उन्होंने बहुत बहुत जल्दी इस फिल्मी दुनिया को अलविदा भी कह दिया था.
Yes. Now let's talk about a musician. Let's remember him. Albert Floyd Piccirilli. Today, it's his birth anniversary. His stage name, very popularly, he is known as Al Rex, bass player for Bill Haley and his Comets. And also the other band was Bill Haley and the Saddlemen. I have chosen a very classic song, a very popular one. Listen in to this.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot.
आज भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर की भी जयंती है. पुर्तगालियों के अधीन गोवा के केरी गांव में केसरबाई का जन्म आज ही के दिन 1892 में हुआ था. पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है. लेकिन शगुन एक बहुत ही खास बात है जिसका जिक्र हम आज जरूर करेंगे. एक बहुत बड़ी उपलब्धि केसरबाई केरकर के नाम पर है. उनका गीत जो है जिसका शीर्षक है जात कहाँ हो, उसको अंतरिक्ष यान वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था. ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक अलग पहचान दिलाने के लिए. साल 1977 में इसे वॉयजर 1 के थ्रू भेजा गया था और बहुत सारे संगीतकारों को का जो संगीत था वो वहां पर भेजा गया था जिसमें उनका भी ये गीत था. और हिंदुस्तानी गायिका सुश्री केसरबाई केरकर की आवाज में अब हम ये सुनते हैं जो गीत अंतरिक्ष में भेजा गया था. ये स्वर था महान गायिका केसरबाई का.
Well, such a beautiful voice, of course, and she was awarded the Sangeet Natak Academy Award and Padma Bhushan as well, and a protege. She has been a protege of Ustad Aladia Khan. Now, let's talk about another musician. Today, it's his birth anniversary again. Well, let me correct that. Today, we are remembering him, well, his birth being on 8th March. Manohari Singh, I'm talking about the saxophonist, music director and the main arranger of semi-final film composer, the seminal film composer R.D. Burman. He worked with Vasudev Chakraborty as a music composer. And this particular piece, he's playing saxophone. Listen in.
आज हिंदी सिने जगत के निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की भी जयंती है. आज ही के दिन 1939 में उनका जन्म हुआ था. दिग्गज निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है और शगुन खासकर उनकी जो जोड़ी थी अमिताभ बच्चन के साथ थी. 70 और 80 के दशक में उन्होंने ऐसी फिल्में दी जो आज भी दिलों में बसी हुई हैं. उनकी फिल्म जंजीर को हम कभी नहीं भूल सकते हैं और उसके इस डायलॉग को तो हम शायद कभी नहीं भूल पाएंगे.
शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं.
साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है. जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा. घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे.
साहब ये फाइल.
हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो.
Well, Prakash Mehra, legendary Indian film director and producer, well, he has given several box office blockbusters and classics as well.
जंजीर से शुरू हुआ सफर शराबी फिल्म तक समाप्त हो गया, लेकिन बहुत से ऐसी पिक्चर्स हैं, बहुत से ऐसे गीत हैं इनकी फिल्मों के, उन्हें कभी नहीं भूल सकते. मुकद्दर के सिकंदर के इस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं.
दिल तो है, दिल, दिल का एतबार क्या
आज सवेरे के आज के संक में बस इतना ही। मुझे नवीन और शगुन को अब दीजिए इजाजत।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार, नमस्कार।